ओम शांति। आज 5 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जैसे बाबा सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे ही आप भी ज्ञान सुनाने वाले बनो। जो बाप से तुमने पढ़ा है वो आपने सबको पढ़ाना है। जो बाप से आपने पढ़ा है वो सबको आपने पढ़ाना है। धारणा करनी है और दूसरों को भी धारणा करानी है। प्रश्न, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बाबा को अटल निश्चय है, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। कौन सी ऐसी बात है जिस पर बाबा को अटल निश्चय है?
ड्रामा।
और उस बात में हमें भी अटल बनना है। ड्रामा में क्या अटल निश्चय है बाबा को? जो बीता वो हर 5000 साल बाद एक्यूरेट बीतता है, उसमें जरा भी गलती नहीं हो सकती। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। जो आपने नहीं करना ना, आप कितना सोच कर जाओ वो आप कर नहीं सकेंगे। जो आपने करना है कितना भी सोचो कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, वो आप करेंगे। कोई भी आत्मा जो उसका रोल है, जो उसका पार्ट है, उससे इधर से उधर नहीं हो सकता। फिर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा। फिर कहना क्यों गलत हुआ, क्यों अनहोनी हुई, ये फिर बात नहीं उठती। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता है क्या निकलता है? ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते। पता कैसे होता? आपने करना यही था, पहले से पता हो फिर उसे रियल ड्रामा तो नहीं कहेंगे ना, फिर तो वो आर्टिफिशियल ड्रामा हो जाए ना। पहले पता हो कि ये करूंगा और ये हो जाएगा, ठीक नहीं, वो फिर आर्टिफिशियल ड्रामा बन जाता है। बाबा कहते बीती बातों को चितवो नहीं, फिर बुद्धि में लाओ ही नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, बस रुको नहीं। कि ऐसी भूल फिर से ना हो, जो गलती हो गई वो हो गई, वो दोबारा गलती ना हो, इस पर अटेंशन देना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूं तो किसी को पता नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं हूं गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ा ही पता पड़ता है। आत्मा
बताया कि अटल हो
हलचल होती है, परंतु वो भी सबको पता थोड़ा पड़ती है कि कब हलचल हुई। भाई आत्मा प्रवेश हुई उसके बाद मूवमेंट शुरू हुई, पर तो आत्मा कब प्रवेश हुई थी? मूवमेंट तो जब आत्मा आ गई फिर तो मूवमेंट चलती रहेगी, ठीक है, परंतु आत्मा ने प्रवेश किया उसके बाद ही हलचल होती है। पर तो आत्मा ने जब प्रवेश किया वो तो किसी को पता नहीं चल सकता। हम आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो पता नहीं लगता, आत्मा प्रवेश करती है तो पता नहीं लगता, हम सोते हैं तो पता नहीं लगता कि आत्मा कब शरीर से चली गई, और आत्मा आ गई आने के बाद फिर वो आराम से धीरे धीरे उठती है। इसीलिए कहते हैं कि जगाना सोए व्यक्ति को तब तक नहीं जगाना जब आग लगने जैसी मुसीबत ना आ जाए। तिथ तारीख निकल ना सके कि आत्मा किस समय गर्भ में प्रवेश किया। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वो तिथ तारीख निकलती है, तो बाबा की प्रवेशता की तिथ तारीख का तो पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आ गए, ये पता नहीं चलता। पता लग जाता है, ठीक है नहीं? मैं तो समझता हूं कि जो आत्माओं का आना जाना समझते हैं देखते हैं उनको पता लग सकता है, क्योंकि जैसे ही दादी को झटका लगा आत्मा गई, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद बहुत ध्यान से अटेंशन से हम देखते रहते हैं ना, तो जैसे ही थोड़ी देर बाद परमात्मा ने प्रवेश किया तो मतलब फिर सीधा सा आंखें हल्की सी पलके खुलेगी, क्योंकि आत्मा प्रवेश करेगी तो पलके खुलेगी, और आत्मा जाएगी तो आंखें पलके जो है ना बंद हो जाएगी।
तो उसके बाद में कई बहनों में बाबा आता है, वो तो कई कोई ना नहीं,
वो जाते नहीं आते नहीं, ठीक है नहीं? वो तो खेल है, वो खेल है, क्योंकि आत्मा शरीर से जब भी निकलती है, क्योंकि हमने गुजार दादी को बहुत नजदीक से देखा, बिल्कुल नजदीक से, मैं कई बार उसको नोट किया है।
वही देखते थे, अब कम झटका दे,
हाँ। अब क्या होता है कि हॉल में तो इतनी दूर हो जाते हैं ना तो नहीं देख सकते, नजदीक से देखने पर इन बस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया, क्योंकि मैं तो एक बार बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि बस अब आत्मा निकलने वाली है, निकलने वाली है, नहीं निकली, नहीं निकली, गीत पूरे हो गए, दो गीत पूरे हो गए, मतलब आत्मा निकलती है बड़ा अच्छी तरह से क्लियर होता है। फिर उस दिन तो आत्मा एकदम झटके से गई और परमात्मा ने उसी टाइम ही उसमें प्रवेश कर लिया, वो भी देखा कि आज टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ये गया और वो, ये गई और वो आई, कुछ पता ही नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वे नशे में चले जाते थे, समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहां से आई? बाबा कहते पता लगता है जिनको, वो समझते हैं कुछ आया है। मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया, इसको कहा जाता है गुप्त, कि कोई ताकत आई है मेरे अंदर ब्रह्मा बाबा के को लगा, पर तो मैंने कोई ऐसा जप तप तो नहीं किया, इसको कहा जाता है गुप्त। तिथ तारीख कुछ नहीं, सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं, कब सूक्ष्म वतन बनाया, कब ब्रह्मा विष्णु शंकर का संकल्प किया शिव बाबा ने, कुछ नहीं, वहां कोई है ही नहीं। मुख्य बात है मन मना भाव। बाप कहते हैं ये आत्माएं तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। पाप आते हैं समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, जब मुझे आना होता है, ये नहीं कि तुमने बुलाया तो मैं आ गया। दुनिया वाले तो क्या देते, आपने बुलाया हम आए हाँ, पर तो बाबा भी कह देते हैं आपने बुलाया है मैं आया हूँ, परंतु बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं बात को, एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। बुलाते तो तुम मुझे द्वापर से आ रहे हो, पुकारते तो तुम मुझे आज ना पुकारना शुरू किया है, तुमने तो मुझे द्वापर से पुकारना शुरू किया है, मैं तो आता हूँ अपने एक्यूरेट टाइम पर। तो चेंज जरूर होती है, सत्युग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे, सत्युग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे, सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी होता जाता है। संवत साल, संवत कहते हैं साल को, एक साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, पता लग रहा है कितने साल बीत गए? बस नया साल मुबारक और गया, फिर नया साल मुबारक। कहते हैं सत्युग पास हुआ, देखा तो नहीं, बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो, तो इस पर गौर करना है कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, जो फिर हू बहू लेने पड़ेंगे, दुख और सुख का पाठ, दुख और सुख का पाठ तो बजाना पड़ेगा। सत्युग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो कहां से छत बहती है, कहां से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है, चिंता हो जाती है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं, नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है, पहले नई होती है फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं, तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं कि सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं है, परले हो जाए। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है, अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां सुख की भाषणा की भी कोई बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े, सो तो पढ़ते रहते हैं, वे तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है, विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है, जरूर सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है जरूर, नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं, फिर टीचर से जो सीखकर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है, एक टीचर क्या कर सकते हैं। तुम सब हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे याद की यात्रा याद करते हो तो लाइट आती रहती है, लाइट आती रहती है। मनुष्यों को तो साक्षात्कार होता रहेगा, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है, बाप क्या बैठा है, मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, पढ़ाई में नंबर वार हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है, मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो, अगर धारणा है तो किसको समझाकर दिखाओ। ये है धन, धन देख, ये है धन, ये है ज्ञान, क्या है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। देखो धन किसी को दे नहीं, किसको क्या पता कि इसके पास धन है, जिसको होगा तो वो देगा। अब ज्ञान का सागर बाबा किसी को ज्ञान देवे नहीं, उसके पास क्या सबूत है कि ज्ञान है। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देवे, तो बाबा आकर ज्ञान देते हैं। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे, महारथी महावीर, बात एक ही है, सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से माथा बैठ मारना होता है क्या। वो लोग अखबार बहुत सुनते हैं, बहुत चमकते हैं, चमकना मतलब गुस्सा करना, चमकना माना गुस्सा करना। फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने पर मत पर क्या किया, हमने किसी ने बहका दिया था तो हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, यहां तो बहुत अच्छा है, हमें गुस्सा आया, ये गलत है, अब यहां आकर पता लगा ये तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहां भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा, ये ड्रामा में पार्ट है। ये तो समझते हो आखरीन जीत तुम्हारी होनी है, आखरीन जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो, पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई, सुना है ऐसा, गई टांडे पर। कई पहले पहला जमाना होता था कि माच से भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, मतलब आग लेने के लिए दूसरे के घर जाते थे, जिसके घर आग हो ना, अच्छा आग जलाई आपने, अच्छा एक आग देना थोड़ा सा, तो वहां से गोसा लेके आते थे, लकड़ी जला के मतलब थोड़ा सा आग वहां से लेके आते थे, फिर आके और उसमें क्या होता था, जाते थे आग लेने, अच्छा चलो एक रोटी बना लेती हूँ, और रोटी पूरी बना के आ जाती थी। मतलब उसको कहते थे मतलब गई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई, ले भी काम हो रहा है। पहले वो क्या बोलते तंदूर होते थे ना गली में घरों में तंदूर आसपास में, वहां एक तंदूर होता था सारे उसी में, दो चार लकड़ी तू डाल दे, दो चार लकड़ी सारे डालो और सारे बना लो रोटी, ऐसा भी सांझा चूल्हा उसको पंजाब में बोलते हैं। तो मतलब ऐसा भी मतलब होता था। तो मतलब ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है, जाते तो हो उंगली पकड़ते हो सारी कलाई पकड़ के बैठ जाते हो। बाबा अपनी चलाकी बता रहा है, मैं भी ऐसे उंगली पकड़ता हूँ तो फिर कलाई भी पकड़ लेता हूँ और खींच के अंदर कर लेता हूँ, फिर जाने भी नहीं देता हूँ, निकलने भी नहीं देता हूँ। हाँ जी हाँ, उंगली पकड़ते ही पोछा पकड़ लेते हैं। तो तुम जान जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, ये भी एक धंधा है, ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, तुम सुनाओ भाई। फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है, क्योंकि दुनिया जो है ना अंधी है, तो है कुछ भी नहीं, रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, तुम बच्चों को कभी शास्त्रों के ऊपर बातचीत बहस नहीं करने चाहिए। तुमको तो जाकर बात का परिचय देना है, क्योंकि शास्त्रों वाली बातें तो है ही जपोड़े। वो कहेंगे ये लिखा हुआ है, आप कहोगे ये ठीक नहीं है, कहेंगे शास्त्र में लिखा हुआ है। जी ठीक है, शास्त्र में लिखा हुआ है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम आपको बाबा की बात बता रहे हैं, सच ये है, शास्त्र तो झूठे हैं, माने उसकी मर्जी ना माने उसकी मर्जी। हम शास्त्रों पर आपके साथ बहस नहीं कर सकते कि शास्त्र के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। बाकी मन मना भव का अर्थ ये नहीं कि गंगा में जाकर स्नान करो। माम एकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो, अर्थात परमपिता परमात्मा ने जो समझाया है वो बैठकर मनन चिंतन करो और बुद्धि में धारणा करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ और कहो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। बाबा कहते तुम मेरी बात के ऊपर चलो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, तो उच्च पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, ये भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात ही नहीं, कोई किताब थोड़ा उठानी है पढ़ाने के लिए। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़े ही बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, सबको यही कहते रहो, माम एकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं, मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? मैं कह रहा हूं याद करो, फिर योग योग क्यों बोल रहे हो? योग 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 अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? अपने शरीर के माता पिता को कोई उसका नाम बैठकर रखते हो? ये भी माँ बाप है ना। ये भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा भी पढ़ता है, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला तो एक बात ही है, तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी फायदा क्या है, सीढ़ी तो उतरते ही आते हो भाई, आप 100% बन गए तो नीचे पतित होना तो शुरू हो गए ना। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होते हैं, पाप और पुण्य कैसे जमा होते हैं। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाने नहीं आता, क्योंकि खुद पता नहीं है ना कि नई दुनिया क्या होती है और पुरानी दुनिया क्या होती है, ये पता ही नहीं होता। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, बाकी तुमको कहां भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं, पति स्त्री को कहते हैं भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था, पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर ये बाहर क्यों जाती हो भाई, क्या फर्क है। पति परमेश्वर है इसको भी नहीं मानते, भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, ये एक रसम पड़ी है, शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहां भी जाना नहीं है, तुमको कहीं भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वो एक ही है, पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वे एक ही है, जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते, वो है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। क्या समझ में आया, पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर, पति परमेश्वर पिता परमेश्वर एक ही बात है, समझ में आया
नहीं
आ भी नहीं सकता ठीक है कि नहीं, क्योंकि वंडरफुल बात जो है ना आज बाबा समझा रहे हैं, देखो कितने क्लियर कहते हैं, वो है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। पिता और पति में मात्रा लगाने में गलती है, बाकी कोई गलती नहीं है, बाकी बात एक ही है, मालिक माना मालिक, बाप भी मालिक है और पिता भी मालिक है, पति भी मालिक है, दोनों ही मालिक होते हैं, परंतु ये देह भान के रिश्ते हैं कि ये पति है और ये पिता है, बाकी दोनों का ही कहना मानना होता है, दोनों ही स्वामी हैं, दोनों ही मालिक हैं। और आपने देखा होगा कुछ बिरादरी में तो पत्नी को भी बच्चे कहा जाता है, ये बच्चे लाए हैं जी, पति पत्नी को भी, पत्नी को भी बच्चे ही कहते हैं, मतलब पत्नी को अलग से कोई नया रिश्ता नहीं बताते, ये बच्चे हैं जी। वे तुमको कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया। सुदेश बहन जी खुश हो जाएंगी, परंतु ये वाली सुदेश नहीं है, ठीक है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुराणों से आगे गई है, इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही, विघ्न भी पढ़ने हैं। कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं है, और दूसरे जो सत्संग हैं उनमें कहीं भी ऐसे विघ्न नहीं होते। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, अमृत छोड़कर विष क्यों खाते हो। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके, सतयुग में रावण का राज्य हो नहीं सकता। समझानी कितनी साफ है, राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो, ये है संगम। दुनिया बदल रही है, स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है। बहुत सहज परंतु धारणा पूरी होती नहीं, और सब बातें याद रहती हैं। बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो, दिन प्रतिदिन तुम साल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल्प पहले मिसल तुम खर्चा करेंगे, कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। जितना ड्रामा में है ना, उतना ही पैसा तुम खर्च करेंगे। ना तो ड्रामा में कम कर खर्च कर सकते हो और ना ज्यादा कर सकते हो। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। ऐसे नहीं कहना होता, ये ऐसा होता तो ये नहीं करते थे। अभी वो अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती को चितवो नहीं, याद नहीं करो। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके, नारद का मिसाल चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। बाबा जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर के अनुसार ही चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाप का सत्य परिचय देना है। बाप का सच्चा सच्चा परिचय देना है। नंबर दो, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट परिश्ता भाव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची 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 स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहां भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहता है। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरने पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो। देह अभिमान में ना हो तब वो फरिश्ता बन सकता है। पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो, क्योंकि देह से और देह की इस पुरानी दुनिया से लगाव होगा तो वो फरिश्ता नहीं बन सकता। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है। कैसे हम फरिश्ते की अवस्था का अनुभव करें? फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसी भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे। अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति, यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।